नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से लुका रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओ, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी प्रभु के वचन से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि एक विश्वासी को एक बार नहीं परंतु अनेक बार क्षमा करने के लिए तैयार रहना चाहिए और आज्ञा पालन एवं सेवा उसका उत्तरदायित्व ही नहीं वरन एक मसीही सद्गुण भी होना है। हमें मसीह के उपकारों के लिए धन्यवाद के हृदय प्रभु को चढ़ाने चाहिए। तब हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु ने दो उदाहरणों के द्वारा संसार की स्थिति का वर्णन किया कि चाहे दंड निश्चित हो फिर भी मनुष्य अपने सांसारिक व्यवहार में लीन रहता है जब तक कि दंड ना आ जाए। अतः नूह की नाई अर्थात नूह की तरह विश्वास में दृढ़ रहें और परमेश्वर की इच्छा अनुसार आचरण रखें। परमेश्वर जब तक अपने विश्वासियों को इस पृथ्वी से हटा ना लेगा तब तक महाक्लेश आरंभ नहीं होगा। मेरे प्रिय मित्रों, आज का अध्ययन आरंभ करने से पूर्व मैं आपको यह मेरा विश्वास है कि वह देहधारी परमेश्वर था और देह धारण के कारण वह किसी प्रकार ईश्वरत्व में कम नहीं था। दूसरी ओर वह मनुष्य रूप में भी सिद्ध मानव था। सच तो यह है कि यदि आप इस समय होते तो उसकी संगति से अति प्रसन्न होते, उसकी हंसी सुनकर बहुत खुश भी होते। मुझे यीशु का कोई भी चित्र अच्छा नहीं लगता है क्योंकि चित्रकार ने यीशु को मुस्कुराते हुए नहीं दर्शाया है। मेरे विचार में वह अनेक बार हंसा होगा। हमारा प्रभु पूर्णतः मनुष्य था और उसकी संगति में आपको बड़ा आनंद प्राप्त होता। मेरे प्रिय मित्र, एक ऐसा मनुष्य जिसकी संगति में आपको बड़ा ही आनंद प्राप्त होता। कुछ प्रचारक ऐसे हैं जिनकी संगति मुझे अत्यधिक मनभावन लगती है। उनकी संगति से मेरी बुद्धि और मानसिक क्षमता का विकास होता है, परंतु जब वे चुटकुले सुनाते हैं तो मैं अवाक रह जाता हूँ। मेरे विचार में हमारा प्रभु यीशु ऐसा ही था। हम एक ऐसी घटना को देख रहे हैं जिसमें मुझे पूरा विश्वास है कि श्रोतागण अवश्य ही हंसे होंगे। हम लुका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय और उसके 1 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। मित्रों, अध्याय 17 का अंत भावी घटनाओं और मसीह के पुनः आगमन की चर्चा के साथ हुआ था। प्रभु यीशु के उन दिनों की तुलना नूह के युग से की गई थी, ऐसा समय जो विश्वास का युग नहीं था। यह आज के युग में भी प्रासंगिक है। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है, भय व्याप्त है। इस गद्यांश में प्रार्थना करते रहने की आग्रह किया गया है। इसी संदर्भ में प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया। कठिन समय में निर्वाह कर रहे मनुष्य के सामने प्रभु यीशु दो विकल्प रखते हैं। आपको ही चुनाव करना है कि आप क्या करें, आप या विश्वास का जीवन जिए या भय का। मेरे मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड में सघन बमबारी हो रही थी, परंतु वहां एक कलीसिया के आराधनालय पर लिखा था, यदि आपके घुटने कपकपा रहे हैं तो दुआ में घुटने टेक दें। वे एक प्रकार से हमारे प्रभु के शब्द ही थे, प्रार्थना करो और ही आप न छोड़ो। दूसरे शब्दों में पौलुस ने भी थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को यह लिखा, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 17 पद में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसका अर्थ यह नहीं कि दिन रात प्रार्थना सभा में बैठे रहें। प्रार्थना का एक स्वभाव है या होठों के चलाने से अधिक जीवन का एक भाग है। स्मरण करें कि पौलुस ने रोमियों की कलीसिया को लिखा 8 अध्याय उसके 26 पद में, आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मित्रों, यहाँ पर बयान से बाहर है अर्थात शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मुंह में शब्द नहीं होते परंतु मन में प्रार्थना अवश्य होती है, परंतु शब्द के पीछे हमारा जीवन है और प्रार्थना का प्रभाव है। बहुत समय पूर्व एक प्रचारक था जिसकी अभिव्यक्तियां असामान्य थी। एक बार उसने कहा, जब मनुष्य फसल के लिए प्रार्थना करे तब परमेश्वर उससे आशा करता है कि वह फावड़ा हाथ में लेकर आमीन कहे। आप घुटने टेक कर ही फसल के लिए प्रार्थना नहीं करते रहेंगे, यह एक पावन मूर्खता है। फसल के लिए प्रार्थना करके परिश्रम में जुट जाओ। हियाव बांधने से हमारे प्रभु का अर्थ यही है, प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना, अधर्मी न्यायाधीश का दृष्टांत। मित्रों, आगे हम देखते हैं जहां पर श्रोतागण समझ रहे थे कि यीशु क्या कहना चाहता था, उसने यह दृष्टांत कहा जिसे हम लूकार्ची सुसमाचार 8 अध्याय उसके 2 और 3 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था, और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ आकर कहती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। मित्रों, यहाँ पर वह न्यायाधीश परमेश्वर का भय नहीं मानता था, वह स्वार्थी और आत्म केंद्रित था, वह अपनी ही अभिलाषाओं की पूर्ति हेतु काम करता था, उसके जीवन आचरण में परमेश्वर का कोई भी स्थान नहीं था, इसी कारण से उसे मानवता से प्रेम नहीं था, इस विधवा के लिए उसके मन में सहानुभूति का कोई भी स्थान नहीं था, इस विधवा के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा था और उसे घर खाली करने को कहा जा रहा था, अर्थात उसे बार बार धमकी दी जा रही थी। वह विधवा जब भी उस गणमान्य न्यायाधीश के न्यायालय में जाती तो उसकी याचिका दायर नहीं की जाती थी। उस विधवा ने लिपिकों को समझाने का प्रयास किया कि वह एक गरीब स्त्री है और एक विधवा है और उसका घर अन्याय से छीना जा रहा है, अतः उसे न्यायाधीश के अनुग्रह की घोर आवश्यकता है। लिपिक ने न्यायाधीश को उस विधवा की समस्या से अवगत कराया। न्यायाधीश ने कहा, कोई बात नहीं, उसे आने दो, मैं जानता हूं कि उसे कैसे टाला जाए। मित्रों, जब विधवा उसके समक्ष उपस्थित हुई तब उसने अति सहज उत्तर दिया, बहन, यह मेरे न्यायिक क्षेत्र से बाहर का विषय है, मुझे क्षमा करना, प्रभु तेरे साथ हो। अगले दिन जब वह न्यायासन पर आया तो वह विधवा वहां फिर दिखाई दी। उसने अपने लिपिक से कहा, उससे कह दो कि मेरे पास दोपहर तक समय नहीं है। लिपिक ने कहा, वह आपसे भेंट करना चाहती है, चाहे कितना भी समय लगे। उसने पूरा दिन उस विधवा को अनदेखा किया और सोचा कि वह हार कर चली गई। परंतु अगले दिन जब वह न्यायालय में आता है तो वह विधवा वहां पहले से ही उपस्थित है। वह दिन प्रतिदिन वहां आती रही और वह न्यायाधीश सोचने लगा, मन में विचार कर कहा, मुझे इसके लिए कुछ करना ही होगा। हम लूकार्ची सुसमाचार 18 अध्याय उसके 4 और 5 पद में पढ़ते हैं, उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम कर दे। मित्रों, यहां पर ध्यान दें, ओह, इस स्त्री ने तो मेरी नाक में दम ही कर डाला। उसने अपने लिपिक से कहा, उस विधवा को भीतर लाओ। उसने उस विधवा से कहा, तुम्हारी वैधानिक सुरक्षा है, तुम अंदर जा सकती हो। हम आगे पढ़ते हैं लूकार्ची सुसमाचार 18 अध्याय उसके 6 और 7 पद में, प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्याय क्या कहता है, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या हुआ उनके विषय में देर करेगा। मित्रों, मैंने अनेक बाइबल शिक्षकों को यह कहते हुए सुना है कि यह दृष्टांत रात दिन प्रार्थना करने की शिक्षा देता है। मैं अपने से बड़ों से असहमत होने का साहस नहीं करता, परंतु इस दृष्टांत की शिक्षा यह नहीं है, यह तुलनात्मक विषमता का दृष्टांत है। हमारा प्रभु सत्य को समझने के लिए दृष्टांत सुनाता था। दृष्टांत यूनानी के पाराबालो शब्द का अनुवाद है, जिसका मूल अर्थ है साथ साथ फेंकना। अंग्रेजी का बॉल शब्द भी इसी से आया है। दृष्टांत का अभिप्राय है कि किसी व्याख्या के साथ उदाहरण देना कि उसका अर्थ समझने में आसानी हो। अतः प्रभु यीशु आत्मिक सच्चाई को समझाने के लिए दैनिक जीवन से उदाहरण दिया करता था। वह उसे दो प्रकार से व्यक्त करता था, एक समानांतर तुलना देकर और दूसरा विपरीत विचारों द्वारा तुलना करके। प्रभु के कहने का अभिप्राय यह है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो क्या वह अन्यायी है? जब आप उससे प्रार्थना करते हैं तो क्या वह एक धूर्त राजनीतिज्ञ है? क्या परमेश्वर राजनीति खेलता है? जी नहीं मेरे मित्रों, परमेश्वर अन्यायी नहीं है। यदि यह स्वार्थी और आत्म केंद्रित न्यायाधीश उस विधवा की पुकार को सुन सकता है तो हमारा परमेश्वर तो न्यायी परमेश्वर है। आज प्रभु के जन प्रार्थना से क्यों पीछे हटते हैं? आपको उसके पीछे पीछे निवेदन करते नहीं रहना है, वह तो आपके लिए कुछ करने की प्रतीक्षा करता है। यदि आप इस तथ्य को समझ लें तो हमारा प्रार्थना का जीवन ही बदल जाएगा। यह जानकर प्रार्थना करना कि उसके कान हमारी ओर लगे रहते हैं, हम सोचते हैं कि वह हमसे रुचि नहीं रखता है, इसलिए हमें बार बार प्रार्थना करते रहना चाहिए, अन्यथा वह नहीं सुनेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर अन्यायी नहीं है। हम आगे देखते हैं फरीसी और चुंगी लेने वालों का दृष्टांत। प्रार्थना के संबंध में प्रभु यीशु ने एक और दृष्टांत सुनाया, जिसे हम लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसके 9 और 10 पद में पढ़ते हैं। और उसने कितनों को, जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। मित्रों, यह दृष्टांत उपहास से पूर्ण है। यीशु उनके मन को ठोस पहुंचाना नहीं चाहता था, वह उनकी सहायता करना चाहता था। दो विपरीत स्वभाव के मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं। फरीसी धार्मिकता में जनमान्य था और चुंगी लेने वाला पापी माने जाते थे। फरीसी अपना बलिदान लेकर मंदिर में गया और याजक को दिया। याजक उसका बलिदान पवित्र स्थान में चढ़ा रहा है और वह प्रार्थना कर रहा है। हम लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाय अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मित्रों, यहां पर आप ध्यान दें कि कैसी भयानक प्रार्थना है। हम भी ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। हमने इसी प्रार्थना को शालीनता से कहना सीख लिया है, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं तेरे लिए समय एवं सेवा दे सकता हूं। प्रभु पर हम कैसा एहसान करते हैं। मेरे मित्रों, यह प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। उस फरीसी ने कहा, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। तब वह परमेश्वर को अपने काम गिनवाता है। हम लूका 18 अध्याय के 12 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, मैं सप्ताह में दो बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का दसवां अंश भी देता हूं। मेरे मित्रों, यह तो बड़ा भला मनुष्य है। हमें इसे अपनी कलीसिया का सदस्य बनाना चाहिए। वह अपने मन में सोच रहा है और सोचता है कि वह प्रार्थना कर रहा है, परंतु उसकी प्रार्थना छत के पार नहीं गई होगी। वह अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर खुशी खुशी बाहर आ गया। परमेश्वर ने तो उसकी प्रार्थना सुनी भी नहीं। चुंगी लेने वाला तो महापापी था। वह तो अपने देश को बेच रहा था। वह तो अब यहूदी ही नहीं रहा, तो धर्मी जन कैसे होता। उसने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया था। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह पैसा कमाना चाहता था। उसने बहुत पैसा कमाया था, परंतु उसके मन में शांति नहीं थी। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में जकई का वृतांत हम पाते हैं। चुंगी लेने वाले का मन कंगाल होता है। यह चुंगी लेने वाला जानता था कि दया आसन में समक्ष उसके लिए कोई भी स्थान नहीं है, अतः वह परमेश्वर को पुकारता है। हम लूका 18 अध्याय के 13 पद में पढ़ते हैं, जहां पर वह इस प्रकार से कहता है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मित्रों, यहां पर ध्यान दें, वो कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं इसे सरल शब्दों में समझाना चाहता हूं। उसने अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे प्रभु, मैं एक चुंगी लेने वाला हूं। महापवित्र स्थान में जो तेरा दया आसन है, वहां तक मेरी पहुंच नहीं है। यदि तू मुझ पर दया करे तो मैं वहां आना चाहता हूं। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ने कहा कि उसकी प्रार्थना सुनी गई। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मसीह यीशु ठीक उसी समय क्रूस की ओर अग्रसर था कि उसके लिए दया का प्रबंध करे। यूहन्ना लिखता है, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 2 पद में, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। मेरे प्रिय मित्र, प्रायश्चित का अर्थ है दया आसन। मसीह हमारे पापों के लिए दया का आसन है, केवल हमारे ही नहीं संपूर्ण संसार के पापों के लिए। उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना स्वीकार की गई। आज आपको परमेश्वर से दया की भीख नहीं मांगनी है, वह दयावान है। कुछ लोगों का कहना है कि हमें उससे दया की भीख मांगनी चाहिए। मेरे मित्रों, आप उससे कैसी दया चाहते हैं? उसने तो आपके लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि आपके स्थान पर मरे। वह पापी मनुष्य से कहता है, तू आ सकता है, तेरे लिए दया का आसन है। मैं आपके सामने स्वीकार करता हूं कि मुझे उस दया आसन के निकट आना था। यदि आप उसकी संतान हैं, तो आपको उस दया आसन के निकट आना है, क्योंकि वहां उसने आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी है। हमारा दंड चुकाया जा चुका है। पवित्र परमेश्वर अपने हाथ फैलाए हुए है। आपको उससे याचना करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उससे प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वह आपकी दुर्बलता जानता है। आपको कुछ बनकर दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप उस चुंगी लेने वाले के सदृश्य हो जाएं। आप उस पर विश्वास करें, वह आपका उद्धार करेगा, क्योंकि परमेश्वर दयावंत है। हम लूका 18 अध्याय उसके 14 पद में पढ़ते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यीशु बच्चों को आशीष देते हैं। बच्चों को यीशु के साथ रहना अच्छा लगता था। लूका 18 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ते हैं, फिर लोग बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, और चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। शिष्यों ने कहा, बच्चों को उसके पास से दूर रखो, उसे परेशान मत करो। तब हम आगे लूका 18 उसके 16 पद में पढ़ते हैं, यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। उनका सोचना था कि बच्चे का कोई महत्व नहीं है, परंतु यीशु के विचार भिन्न थे, वह उनके लिए परेशानी का कारण नहीं थे। हम लूका 18 उसके 17 पद में पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण न करेगा वह उसमें कभी प्रवेश न करने पाएगा। मेरे मित्रों, बच्चे अपने आप यीशु की ओर खींचे चले आते थे। वह भी नहीं चाहता था कि बड़े लोग बच्चों को उससे दूर रखें। परमेश्वर ऐसे वयस्कों पर दया करे जो बच्चों को प्रभु से दूर रखते हैं। बच्चों के संबंध में यीशु पहले से भी कह चुका है, जिसे हम 17 अध्याय के 2 पद में पाते हैं, जो इन छोटों से किसी एक को ठोकर खिलाता है उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। मेरे मित्रों, बच्चे आपके चरण चिन्हों पर चलते हैं, अर्थात आपके पद चिन्हों पर चलते हैं। वे आप पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। आप जो भी कहेंगे वे करने को तैयार रहते हैं। आप उन्हें परमेश्वर के पास न लाएं तो परमेश्वर ही आप पर दया करे। बच्चे तो सामान्यतः उसके पास आते ही हैं। आप कहेंगे कि बच्चों में गलती करने का स्वभाव होता है। जी हाँ, परंतु उनकी आयु लेखा देने की नहीं है। बच्चा वही निर्णय लेगा जिसमें उसकी अगुवाई की जाएगी। बच्चे का यह स्वभाव होता है। बच्चा बड़ा होने पर अपनी इच्छा का विकास करता है, तब समस्या का आरंभ होता है। परंतु जब तक वह निर्माणाधीन है तो वह सुनिश्चित करे कि वह मसीह के पास आए। यीशु आराधनालय के सरदार को 5 आज्ञाएं स्मरण कराते हैं। यह वृतांत मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 16 से 30 पद और मार्कुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 17 से 31 पद में दिया गया है। यह एक उत्तम कहानी है जिसमें प्रभु उस धनवान व्यक्ति के व्यवहार को मुद्दा बनाते हैं। हम यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 18 और 19 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु एक धनवान युवक को यह समझाना चाहता था कि यदि वह उसे भला कहता है तो इस कारण कि वह परमेश्वर है। यही कारण था कि यीशु ने उससे उसके पीछे आने को कहा, जैसे शिष्य उसके साथ रहते थे। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। हम आगे देखते हैं लूका 18 अध्याय उसके 20 से 22 पद में, जहां पर लिखा हुआ है, तू आज्ञाओं को तो जानता है कि वे विचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूं। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रिय मित्र, यीशु ने उस युवक को 10 आज्ञाओं का अर्थ बताया जो मानव के साथ व्यवहार के संबंध में है। पहला भाग परमेश्वर और मनुष्यों के संबंध में है। यह युवक दूसरा भाग पूरा कर चुका था, परंतु पहले भाग में अभी भी निपुण नहीं था। उसमें एक कमी थी कि वह अभी परमेश्वर के साथ संबंधों में सिद्ध नहीं था। उसके मार्ग में बाधक उसकी धन संपत्ति थी। किसी और के लिए कोई और कारण हो सकता है। व्यवस्था इस आकर्षक युवक को दोषी ठहरा रही थी। धन और कर्मों से स्वर्ग प्रवेश संभव नहीं है। केवल परमेश्वर ही ऊंट को सुई के नाके में से निकाल सकता है और परमेश्वर ही नया जन्म भी प्रदान कर सकता है। हम लूका 18 अध्याय 23 से 30 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। और सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या लड़के वालों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक न पाए और परलोक में अनंत जीवन। उसकी अनिच्छा के उपरांत भी लिखा है कि यीशु ने उससे प्रीति रखी। धन ने उसे यीशु से अलग कर दिया था। यदि वह यीशु के पीछे हो लेता तो वह क्रूस की छांव में उद्धार पा लेता, क्योंकि यीशु इस समय क्रूस के अति निकट था। यह युवक कौन था मैं नहीं जानता, परंतु आप वह युवक हो सकते हैं। क्या वह बाद में यीशु के पीछे आया? आशा तो यही है। क्या आप उसके पीछे हो लेंगे? वह आपसे प्रेम करता है। मेरे मित्र, हम आगे देखते हैं कि यरीहो में प्रवेश करते समय यीशु अंधे मनुष्य को दृष्टिदान देते हैं। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़ें, आपको बता देना चाहता हूं कि बाइबल के आलोचक यहां विरोधाभास देखते हैं, क्योंकि मती दो अंधों का उल्लेख करता है जबकि मार्कुस और लूका एक ही अंधे का उल्लेख करते हैं। तथापि इस अंश का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि मुख्य विषय यीशु द्वारा चंगाई का कार्य है। मार्कुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 46 पद में एक अंधे मनुष्य का नाम विशेष करके दिया गया है, बर्तिमाय, जो पुकार रहा था, यीशु दाऊद की संतान। लूका के इस अंश में अंधे मनुष्य को दृष्टिदान उस समय दिया गया जब यीशु यरीहो में प्रवेश कर रहा था। इस व्यक्ति ने भी पुकार कर यीशु को दाऊद की संतान कहा था। हम लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 35 से 37 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, वह जब यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था, और वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। मेरे मित्र, यहां पर हम देखते हैं कि उसके द्वारा यीशु को दाऊद की संतान कहने का अर्थ यह था कि वह उसे राजा स्वीकार कर रहा था। उससे पूरा विश्वास था कि यीशु उसे दृष्टिदान देगा, अतः उसे शांत करना संभव नहीं था। उसे यीशु में विश्वास था। इस व्यक्ति के साथ यीशु का व्यवहार मृदु हर्षोपादक था। हम लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 38 से 43 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे जाते थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रह, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उसने उसे यह पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। मेरे मित्रों, दृष्टिदान पाकर वह व्यक्ति यीशु के साथ हो लिया, और कुछ दिनों पश्चात उसने क्या देखा कि यीशु क्रूस पर अपनी जान दे रहा है। आज अनेक जन जिनके पास संपूर्ण दृष्टि है यीशु को क्रूस पर जीवन अर्पित करते नहीं देख पा रहे हैं, जो उनके जीवन और पाप क्षमा का कार्य है। यदि आपने अभी तक यह नहीं देखा है तो देखें और जिएं। मेरे प्रिय मित्र, आज का हमारा यही अध्ययन था कि परमेश्वर अन्याय नहीं है। वह तो हमारी ओर कान लगाए रहता है कि हम उसे कुछ मांगे, और हमारी दीनहीन अवस्था में चुंगी लेने वालों की नाई हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे लिए दया आसन उपलब्ध करा दे। वह बच्चों से प्रेम करता है, अतः हमें बच्चों को उसके पास लाना है और अपने तथा परमेश्वर के संबंध को किसी भी प्रकार से बाधा नहीं लाने देना है। यीशु ने हमें आंखें बंद करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन हमें आंखें दी है कि हम क्रूस पर उसके बलिदान को देखें जो हमारे पापों के लिए था, हमें पाप क्षमा देकर जो जीवन देता है। मेरे प्रिय मित्र, आज मुझे और आपको निर्णय लेना है कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, अर्थात हम किन आंखों से प्रभु यीशु को देख रहे हैं। यदि आज भी हम उन अंधे के समान हैं, तो आज मुझे और आपको उन आंखों से प्रभु यीशु को देखना है जिसने मेरे और आपके पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आज आपने अवश्य ही आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
चलो जय 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 जयकार करो रे लोगो, अब जल्दी ही आएगा यहोवा। सामने आओ पास उसके, तुम करो आराधना। चलो जय 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 जयकार करो रे लोगो, अब जल्दी ही आएगा यहोवा। सामने आओ पास उसके, तुम करो आराधना। जल्दी ही आएगा यहोवा। सामने आओ पास उसके, तुम करो आराधना। बच्चे हैं वो है मेरा पिता, परमेश्वर यहोवा। के बच्चे हैं, वो है मेरा पिता।